गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, बुरी आदतें भी छोड़ाया इलाही, बुरी आदतें
मुसअब बिन उमैर रबी अल्लाह का। बड़े मालदार घराने से ताल्लुक रखते थे, बड़े नाजों के पले थे, बेहतरीन टिप टॉप जिसको हम बोलते हैं टिप टॉप के कपड़े पहनते थे। और मक्का मुकर्रमा में इन्हें ठीक ठाक इनका शोहरा था, इतने खूबसूरत और मतलब है कि टिप टॉप वाले थे, जिसको आजकल हम लोग फैशन परस्त बोलते हैं। खैर, हमारे भाई मुसलमान होने के बावजूद फैशन करते हैं, और वो उस वक्त करते थे जब मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन जब रहमतों के दरवाजे इन पर खुले, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीठी नजर इन पर पड़ी, तो ये झट बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए और इस्लाम कबूल कर लिया। इनकी माँ इनसे बड़ी मोहब्बत करती थी हद दर्जा, और वो दौर भी बड़ा नाजुक था, अभी शुरू शुरू का दौर था, और जो मुसलमान हो जाता था उसको बड़ी तकलीफें आती थी। तो इन दो वजूहात की बिना पर इन्होंने अपना इस्लाम छुपाए रखा, अगर माँ को पता चल गया तो ये शोर मचाएगी और फिर कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर भी तकलीफों का सिलसिला हो, छुपाए रखा। लेकिन शायद आपने सुनी हो कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, इश्क का भांडा भी फूट जाता है और मुश्क की खुशबू जो है वो मतलब आखिर फैली जाती है। तो इसी तरह इनका इस्लाम भी कब तक पोशीदा रहता, आखिर इसकी खुशबू फैली गई और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनका जो अंदाज था आखिर पकड़ा ही गया। बहरहाल खानदान वालों को किसी तरह मालूम हो गया कि ये मुसलमान हो गए, बस फिर क्या था, लिखाई शुरू हो गई। जैसे बाज सख्त माँ बाप आज भी हैं, अगर पता चल जाएगा दावत इस्लामी के इज्तम में चला गया था, पिटाई लगाते, लड़के आते हैं रो रो के बताते हैं बेचारे माँ बाप नहीं आने देते, छुप के आते हैं तो पकड़े गए तो मार खाते। सर वहां मामला दूसरा था, मुसलमान क्यों हो गया इस पर मार पड़ रही थी, तो उनको भी मतलब यानी कि अच्छी खासी पिटाई लगी, बड़ा मारा, बहुत मारा, और फिर रस्सियों से बांध दिया और इस नाजों के पाले को कोठड़ी में बंद कर दिया। बड़ी तकलीफ में आ गई है, तो शैतान ने बड़े हमले किए होंगे उस वक्त, ये तूने बेटे बिठाए क्या मुसीबत ले ली, अच्छा खासा तेरे पास तो मतलब यानी कि वो माल था, बड़ी मोहब्बत तेरा खानदान करता था, तू बड़ा फैशनेबल था, बड़ी तेरी वाहवाह थी, ये तूने क्या कर लिया, ये तूने किससे मोहब्बत का रिश्ता जोड़ लिया जो आज तू काल कोठड़ी में पड़ा है। लेकिन ये हिले नहीं, हिले नहीं, पिटते रहे, तकलीफें बर्दाश्त करते रहे, लेकिन इनकी मोहब्बत में कोई कमी आई नहीं। और जो नशा प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जाम पीकर चढ़ गया था वो उतरने वाला नहीं था। किसी ने कहा है ना, मोहम्मद की मोहब्बत में हजारों जुल्म सहते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा पर थी नजर इनकी जबा से कुछ न कहते थे, ये जुल्म उनको खुदा से दूर कर सकते थे न हरगिज, नशे सहबाए वहदत के उतर सकते थे न हरगिज। तो ये नशा उतरने वाला था नहीं। खैर, अब थोड़े से मुसलमान हुए थे और कुफ्फारे नाअंजार उन पर जुल्मों के पहाड़ तोड़ते रहते थे, बहुत सताते थे मुसलमानों को। जब इनके जुल्मों का एक मतलब उरूज हो गया तो वक्त मुनासिब पर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मजलूम मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाजत मरहमत फरमा दी। चुनाचे हिजरत के लिए काफिला तैयार हुआ, सैयदना मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला भी किसी तरह घर से छूट छाट के उसमें शामिल हो गए। ये काफिला कितना बड़ा था पता है आपको, सिर्फ 12, बारहवीं शरीफ की निस्बत से 12 मर्द और 4 यार की निस्बत से ले लो 4 खवातीन, 16 अफराद का एक मुख्तसर सा काफिला हबशा की तरफ हिजरत के लिए चल पड़ा। या कुफार को पता चला कि ये भाग रहे हैं लोग, उन्होंने तरह तरह से इनके लिए रुकावटें खड़ी की, लेकिन बहरहाल गिरते पड़ते ठोकरें खाते हुए आखिरकार ये काफिला जो था वो हबशा पहुंचने में कामयाब हो गया। बड़ी कुर्बानी है, ये वाकयात बयान करना और सुनकर सर धुन देना या सुभान अल्लाह कह देना तो बड़ी आसान सी बात है, लेकिन अपने से तो फजर के टाइम पर बिस्तर छोड़ने की कुर्बानी भी नहीं दी जा सकती, यानी हम अल्लाह के लिए बिस्तर भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और ये हजरात अपना वतन छोड़कर चल पड़े सिर्फ अल्लाह के लिए। ये चाहते और अगर इस्लाम को छोड़ देते तो फिर उनके लिए ऐश कोशियां थी, फिर उनके लिए राहतों और आरामों का दौर था, लेकिन वो इस बात को समझते थे कि ये दुनिया की राहतें आरजी, ये दुनिया का ऐश बिल्कुल मुख्तसर तरीन है, और असल जिंदगी ये नहीं जो यहां हम रह रहे हैं, असल जिंदगी तो बाद में, वो समझते थे। तो इसलिए हर तकलीफ को वो फूल की तरह बर्दाश्त करते चले जा रहे थे। बहरहाल सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला ने कुछ अरसा हबशा में रहे और गरीबुल वतनी की जिंदगी वहां गुजारी। माँ की ममता से दूर, बाप की शफकत से दूर, खानदान वालों की नाज बर्दारियों से दूर, ये नाजों का पाला ये असीम नौजवान हबशा की गलियों में घूम रहा है। वाहर इस्लाम तेरी क्या शान, वाहर अल्लाह के महबूब क्या अजमत है आपकी, कैसा जाम पिला देते हैं कि जब ये नशा चढ़ जाता है दुनिया का सारा ऐश मुकद्दर हो जाता है। ये ऐसा नशा है कि सारी राहतें हेज होकर रह जाती हैं। ये ऐसा नशा मोहब्बत है कि सारे कांटे मुस्कुराते हुए फूल नजर आते हैं। अल्लाह बहरहाल मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आखिरकार फिर मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले आए और फिर मतलब उनकी तकलीफों का दौर सिलसिला, लेकिन ये इस्तिकामत के पहाड़ है। बस इनकी शान ये है कि बिजलियां चरख से और कोह से पत्थर बरसें, सारी दुनिया की बदाएं मेरे सर पर बरसें, खत्म हो जाए गो हर एक मुसीबत मुझ पर, फिर भी ईमान को जुम्बिश हो तो हैरत मुझ पर। ऐसा ईमान मजबूत कि शीशा पिलाई हुई दीवार भी टकराए तो टूट जाए। इनका ईमान न टूटे, इनका रिश्ता है महबूबियत, इनका रिश्ता है मोहब्बत अल्लाह के महबूब के साथ इतना मजबूत कि दुनिया की कोई आ रही तो क्या, आ रहा तो क्या, बड़े से बड़ी तलवार भी उस रिश्ता है मोहब्बत को नहीं तोड़ सकता और नहीं काट सकता। आपके सवाने निगारों ने लिखा है कि आपके इस्लाम लाने से पहले ठाट वाट ऐसे थे जो मैं अभी बयान कर चुका, और बड़ा उम्दा पोशाक पहना करते थे, लेकिन क्योंकि अब तो सख्तियों का दौर था, घर वालों से तो बिल्कुल मुकातियत थी, बायकॉट था, घर तो छोड़ चुके थे, वो इस्लाम की खातिर सारे रिश्तेदारों से मुंह मोड़ चुके थे। तो जब आप हबशा से दोबारा अपने वतन अजीज मक्का मुकर्रमा में तशरीफ ले आए तो आपके जिस्म पर मोटे और खुरदरे कपड़े का लिबास था, उसमें भी कई जगह पैबंद लगे हुए थे, और जिस्म की नर्म और नाजुक खाल जो थी अब वो धूप में और गर्मियों में फिर फिर कर मोटी और खुरदरी हो चुकी थी। लेकिन वाहर इस्तिकामत, आपकी इस्तिकामत में जर्रा बराबर भी फर्क ना आने पाया था। अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पाका मस्ती के साथ जिंदगी गुजारना और बामल बनकर रहना, इनके नजदीक दुनिया की ऐश और तायुश भरी बेअमल जिंदगी से लाखों दर्जे अफजल थी और अजीज थी। एक बार दो जहां के ताजदार, नबियों के सरदार, शफीए रोजे शुमार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहर बार में जब हाजिर हुए तो कोई लिबास जिस्म पर ऐसा न था जिस पर पेवन न लगे हुए, और मोटा और खुरदरा लिबास। सरकार आलम मदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इनकी इस्लाम से पहले की हालत याद आ गई कि कितने नाजों के पले थे, तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। एक मौके पर इस हालत में दरबार रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हाजिरी हुई कि सतर पोशी के लिए कोई कपड़ा ही मुयसर ना था, जिस्म को एक खाल के टुकड़े से छुपा रखा था और उस खाल में भी जगह जगह पैबंद लगे हुए थे। ये एक लर्जा खेज मंजर था कि जो जिस्म रेशम के सिवा कभी किसी और लिबास से आशना ना हुआ था आज एक बोसीदा खाल में मलबूस था। सरकार नामदार, नबियों के सरदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान राय खुदा के निराले मुसाफिर को इस अजीब लिबास में देखकर बेकरार हो गए। इस्लामी भाइयों, अल्लाह अकबर, एक वो भी मुसलमान थे कि राह हिदायत पर गामजन होने के बाद कैसी कैसी आजमाइशें आई, लेकिन उनका जज्बा कम होने के बजाय बढ़ता ही चला गया। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी को कैसा बदल डाला था। उन्होंने दीन की खातिर सारी शान और शौकत और तमाम आराम और राहत को ठोकर मार दी, और आह, एक हम भी मुसलमान हैं क्या, हमें नित नए फैशन ही से फुर्सत नहीं, हर वक्त दुनिया ही की धुन सवार है। वो दीन की खातिर घर बार छोड़कर, अपना वतन छोड़कर निकल जाते थे, और आज हम भी निकलते हैं, लेकिन दुनिया की खातिर कोई जापान जाने के लिए बेकरार है, कोई अमेरिका के लिए तड़प रहा है, तो एक हम मुसलमान हैं कि अपनी मुसलमानी पर शर्म आती है, और एक वो मुसलमान थे इनकी इस्तिकामत देखकर रश्क आता है, इनका जज्बा ईमानी देखकर हैरत होती है। वो मुअज्जज के जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीख कुरान होकर। وہ حقیقی مسلمان بن کر رہے، زمانے میں عزت پائی، اور ہم نے قرآن و سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا، محبوب کی سنتوں سے منہ موڑ کر جو مسلمانوں کے کٹر دشمن ہیں ان کے طور طریقوں کو اپنایا، ان کے تہذیب و تمدن کو گلے سے لگایا اور ان کی فیشن کے پیچھے دوڑ لگائی، اب برباد ہو گئے، ہم ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ آج مسلمانوں کی کوئی آواز نہیں ہے، کوئی آواز کہ ہمارے شاعر جو ہیں وہ ختم ہو گئے، کہیں بے عملی کی سزا تو نہیں مل رہی ہمیں، کیونکہ ہم نے تو صحیح بات ہے اللہ اور رسول کو ایک طرح سے بھلا دیا، عملی طور پر ہماری مسجدیں بالکل خالی ہوئی، ہمارے سینما گھر آباد ہوئے، ہماری تفریح گاہیں آباد ہیں، ہماری عبادت گاہیں ویران، اسلامی شاعر جو وجود میں تھے وہ نظر نہیں آتے، اور جو ان شاعر کو ان نشانیوں کو اپناتا ہے مسلمان اس کی مخالفت کرتا ہے، داڑھی رکھی تو لوگ مولوی بولتے، ملا بولتے، امامہ باندھا تو اس کو حیرت سے دیکھتے، یہ کہاں سے آ گیا امامہ اور داڑھی اور یہ زلفیں، یہ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ مسلمان کرانے والے کو حیرت ہوتی ہے، افسوس صد افسوس، اور پھر بھی غیرت نہیں آتی، پھر بھی شرم نہیں آتی، مسلمانوں کو پھر بھی کوئی احساس نہیں ہوتا، خلاص بالکل ایسا لگتا ہے غیرت و مروت کا جنازہ اٹھ چکا، نہ جانے کب اب یہ روح ہمارے اندر پھر کوئی پھونکے، اسلام کی حمیت ہمارے اندر پھر بیدار، ہماری رخصت اور گئی ہوئی غیرت جانے کب لوٹے، اور کب ہم بھی اسلام کی علامات کو اپنے اوپر سجائیں۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کی غالب اکثریت، اغلب اکثریت ٹھیک ہے اپنے شاعر کھو بیٹھی ہے، اپنی نشانیاں کھو بیٹھی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم بھی اس میں رنگ جائیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، ہمیں ہر ایک اگر اپنی اپنی ذمہ داری سمجھے تو بات بن سکتی ہے۔ اب میں سوچوں کہ یار یہ سارے لوگ داڑھی نہیں رکھتے اس لیے میں نہ رکھوں، سارے لوگ نہیں رکھتے تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ یار مجھے تو اپنی قبر میں جانا ہے، ٹھیک ہے یہ سارے لوگ بھی باری باری اپنی قبر میں جائیں گے، اللہ ان پر رحمت کرے، بدوقت دن ہی نہیں اپنے کو، مجھے بھی اپنی قبر میں جانا تو میں اپنی تیاری کروں، ان کے لیے بھی دل میں جلوں، کڑوں، سوز رکھوں، ان کے لیے دعا کروں اور اپنا کام خراب نہ کروں، جیسے سب کو دیکھ کر لوگ اپنا کام خراب کر رہے ہیں، یار سب کرتے ہیں، اب یار اپنے اکیلے تھوڑی ہیں، سبھی ایسے کرتے ہیں، یار زمانہ ہی ایسا ہے، معاذ اللہ لوگ بزرگ، زمانہ ہی ایسا ہے، کیا کر یار اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، یار اس کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے، بھائی میرے وہ دلائل لاؤ کہ جو قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں تمہیں بچا سکے، اب یہ سب ایسا کرتے ہیں اور زمانہ ایسا ہے اور دور ایسا ہے اور یار اس کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے، تو کیا یہ دلائل اللہ تعالی کے آگے چل جائیں گے؟ اگر رب ناراض ہوا تو اس طرح کی گفتگو اللہ کے قہر و غضب سے بچا دے گی، یہ دیکھ لیا۔
گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھوڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھوڑایا۔